अमित व प्रिया वीणा से विदा लेकर लौट आए। वीणा ने चलते हुए यही कहा था, देव की बरसी के बाद तूम दोनों का ब्याह रचा लूं, यही मेरी इच्छा है, बाकी सब बाद में सोचेंगे। एकाएक अमित को लगा कि शायद अभी भी वीणा अपनी सोच को कुछ समय देना चाहती है, लेकिन उसमें कुछ तो बदलाव आ ही गया था। वीणा के शब्दों में हां थी, यही भाव समेटे वे घर लौट आए। अमित तो मां निर्मला का दुलारा बन गया, कैसे होगा, कौन ढूंढेगा, सब अमित पर छोड़ दिया मां ने। लेकिन अमित को अपने मां बाप का भी डर था, भाइयों का भी, वे सब तो बातें बनाएंगे। इसी दुविधा में पड़ा अमित अगले 6 महीने कुछ ना कर सका। अपनी प्रिया की शादी की चिंता भी उसे सताए जा रही थी। जो माध्यम था उसका, वह स्वयं दुखों के पहाड़ को उठाए जी रहा था। किससे कहता, कौन उसकी सहायता कर सकता था। एक चिराग था उसके पास, प्रेम। हां वही, वह स्पष्टवादी था, परिस्थितियों को बेवजह मिला जुलाकर नए आयाम नहीं स्थापित करने वाला। किसी की जिंदगी में जो कुछ घटित हुआ है उसका दोषी समाज को या किसी परिवार के दूसरे सदस्य को ना मानने वाला, लेकिन जो कहना है बेझिझक कहने को तत्पर। प्रेम यूनिट से लौट रहा था, घर जाते हुए उसकी ट्रेन जब दिल्ली पहुंची तो अमित स्टेशन पर उससे मिलने पहुंच गया। प्रेम को उसे देखकर आश्चर्य हुआ। सामने खड़े अमित को, अमित के मन को वह समझता था। एक दूसरे के वे गले मिले, बहुत अच्छा लगा किसी अपने को 6 महीने बाद मिलकर। प्रेम ने उसके हाथ को पकड़े हुए कहा, तुम्हें किसने बताया था। प्रिया की चिट्ठी आती है, उसी ने लिखा था, अमित ने कहा, जैसे संकेत दिया कि प्रिया और उसका संबंध कायम है। अभी प्रेम अपनी कोई प्रतिक्रिया देता, अमित ने पुनः कहा, पिछले महीने मैं देहरादून गया था, मम्मी ने भी कहा था कि तुम आ रहे हो। बहुत अच्छा लगा अमित तुमसे मिलकर। प्रेम को अमित अच्छा लगता था पहले से। और क्या चल रहा है, काम कैसा है, घर में सब कैसे हैं? प्रेम के शब्द एक साथ बने और निकलने लगे, सभी अच्छे हैं, काम भी अच्छा है, और जो दुख है उससे हम तुम सभी वाकिफ हैं। अमित कुछ कहने से पहले स्वयं को तैयार कर रहा था, समय सब ठीक कर देगा। हाँ समय सब ठीक ही करेगा, मैं वीणा भाभी से मिला था, मम्मी ने लिखा होगा तुम्हें, पूछा अमित ने। लिखा था सब, मुझे तो अच्छा ही लगा सुनकर कि दीदी मान गई है, लेकिन कोई उसके योग्य मिलेगा तभी यह हो पाएगा, हर किसी को तो यह रिश्ता रास नहीं आएगा। प्रेम के शब्द स्पष्ट थे, दर्द भी था उनमें। हाँ हर किसी को नहीं रास आएगा, मैंने अखबार में विज्ञापन देने की सोची है, अपने मन की बात कही अमित ने, लेकिन मैं घर में चिट्ठी नहीं मंगवा पा रहा था। अब तुम आ गए हो, देहरादून के पते से दे दूंगा, तुम इसे संभाल लेना। शुक्रिया अमित, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, मुझे पता है कि दिल से तुम चाहते हो कि दीदी का घर बस जाए। वह भावुक हो चला था लेकिन शब्द स्पष्ट थे। हाँ एक बात है तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर में तूफान खड़ा ना हो जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, सिर्फ माँ ही रूढ़िवादी है, वही कभी कभी दबे मुंह पुरातन बातें कह जाती हैं, लेकिन फिर भी जानता हूँ एक ही बात, जीवन वीणा भाभी का है, जीना उन्होंने उसे अपने लिए है, उसमें माँ की बात यदि दकिया नूसी है तो मुझे उसे नहीं सुनना, समय सभी बातें सभी रूप बदल देता है। अमित भी मन में आई हर बात उससे कह रहा था, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी मम्मी को भी समझना चाहिए, अभी प्रिया आएगी तुम्हारे घर, ऐसा नहीं कि तुम उसे कुछ कष्ट होने दोगे, लेकिन एक बात तो सिद्ध है कि कहीं ना कहीं उसे वीणा के पुनः विवाह पर कुछ ना कुछ तो सुनना होगा। अमित को प्रेम के शब्द सुनकर जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। उसने तो सोचा भी ना था कि प्रेम के शब्द उसके व प्रिया के संबंधों के प्रति इतनी जल्दी वाक्य गढ़ लेंगे। देखो प्रेम, मैं सभी के प्रति अपने कर्तव्य को निभाता आया हूं। घर में सबसे छोटा हूं, लेकिन जीवन में अभी तक इतना देख चुका हूं कि किसी की व्यर्थ की बात, किसी का व्यर्थ का हट मुझे नहीं झुका सकता। और मैं प्यार से सब कुछ देता हूं तो मुझे अपने अधिकार भी मालूम है। अपने अधिकार क्षेत्र में मेरा जीवन है, मेरी अपनी धारणाएं हैं। मैं अपने रास्ते से, अपनी राय से इतनी जल्दी मुंह नहीं मोड़ पाता। अमित के शब्द प्रेम के बहुत गहरे मन को छू गए। अच्छा लगता है तभी बात करके तुमसे मेरे छोटे जीजा जी, और प्रेम ने उसे गले लगा लिया। मैं छुट्टी आया हूं इसीलिए कि मम्मी ने मुझसे कहा है कि अमित भीतर से बहुत परेशान है, उसे अब प्रिया से विवाह करना है। प्रिया से विवाह की सोचो और फिर तुम दोनों मिलकर वीणा दीदी के लिए एक लड़का ढूंढ लेना। एकाएक बात का प्रवाह इतना मीठा मोड़ लेगा, अमित को इसकी आशा नहीं थी। भावुक होकर वह बोला प्रेम से, मम्मी तो मेरे मन की बात समझती हैं, लेकिन मैं ही दुविधा में पड़ा था। तब प्रेम एकाएक विचारा मग्न हो गया, कुछ ठहर कर बोला, अमित कुछ बातें मैं स्पष्ट होकर कहना चाहता हूं तुम्हें, इन्हें अन्यथा ना लेना। कारण तुम समझते हो, जिन हालात से हमारा परिवार गुजर रहा है उससे तुम वाकिफ हो, बल्कि एक तरह से तुम उसका हिस्सा भी हो। प्रिया से शादी करके हो सकता है तुम्हें किसी ना किसी से अन्यथा बात सुनने को मिले, या फिर तुम्हें कहीं अपमान भी महसूस हो। मैं समझता हूँ, माँ समझती है, मेरे सभी परिवार वाले समझते हैं, पर परिवार के हर सदस्य का अपना भी परिवार है। उन्हें कुछ कहना होगा तो वे अवश्य कहेंगे, सामने ना सही पीछे से। ऐसे में तुम्हें सबकी मनस्थिति को सहना होगा। दूसरे शादी जल्दी हो इसका मुझे ऐतराज नहीं। हाँ एक बात है, शादी बिल्कुल सादगी से होगी, न बैंड न बाजा न बाराती, बस तुम और तुम्हारे परिवार वाले, और कोई धूम धड़ाका नहीं। हम सभी रस्में अदा ना कर पाए इस पर तुम्हारे परिवार वाले कोई बात नहीं बनाएंगे। प्रिया खुश रहेगी यह मैं जानता हूँ, उसका मान अपमान भी मेरे दायरे में नहीं तुम्हारे दायरे में आता है। बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार के साथ हो और हम भी तुम्हारे साथ हैं। प्रेम अपनी बात कह चुका तो अमित ने गंभीरता से कहा, देखो प्रेम, मैं स्वयं सभी परिस्थितियों को समझता हूँ। मुझे वैसे भी शोर शराबा तभी अच्छा लगता है जब मन से उसकी आवाज आ रही हो। जहां तक लेन देन या रस्मों रिवाज की बात है, उसका ना लोभ मुझमें है और ना ही कोई लोभ मेरे समक्ष दिखा सकता है। प्रिया मेरे लिए ही आ रही है मेरे घर में, और उसे पूरा मान सम्मान मिले इसकी मुझे भी चिंता है। अपनी जिंदगी को मुझे पूरी तरह जीने का अधिकार है और उसके लिए मैं अपने को तैयार कर चुका हूँ। हाँ कुछ कष्ट आएंगे मैं भी जानता हूँ, और इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिया क्या करेगी, यह तुम हम दोनों पर ही छोड़ दो। यदि तुम्हें अपने मनोभावों पर विश्वास है तो मानो मैं भी वैसा ही हूँ जैसा तुम्हारा मन मानता है। अमित के शब्द प्रेम के मन को छू गए। उसकी देहरादून जाने वाली ट्रेन का समय हो गया था। अमित को गले लगाता तब वह बोला, सब ठीक हो जाएगा अमित, तुम मम्मी डैडी से मिलकर तारीख तय कर लो, मैं भी वही होऊंगा, अगले एक महीने में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा, यहां सबको बताकर। और वीणा भाभी की चिंता के विषय में यही कह सकता हूं कि तुम ना अकेले थे ना अकेला स्वयं को पाओगे, अब वह मेरी भाभी नहीं दीदी है। यह कहकर अमित ने प्रेम से विदा ली। प्रिया के प्रति नए सपने उसे संजोने थे और अपने घर में सब कुछ ठीक करना था। मां कृष्णा के मन में झिझक थी, खुलकर वह कुछ ना बोल पाई। अमित अब जल्दी शादी करना चाह रहा है प्रिया से, यह सुनकर वह तटस्थ भाव से इतना ही बोली, मैं क्या कहूं, यह मां का एक रटा हुआ वाक्य था। क्यों, कुछ गलत होगा क्या? अमित को मां की बात पटपटी लगी। मां तो बहुत खुश होगी, ऐसा सोचा था उसने। अपने भाइयों की शादी में वह बढ़ चढ़कर खुशी मनाता रहा। मां हमेशा खुशी से देखती थी उसे, यही कहती थी तब, देखना अपनी शादी में भी बहुत नाचेगा अमित। मैं क्यों, सभी नाचेंगे, भाई भाभी तुम भी बाबूजी भी, सबसे छोटा हूं लेकिन खुशी तो सबसे बड़ी होगी घर भर की। अमित की बात सुनकर सभी हंसते थे और आज जिसे सुनकर सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था वही मैं क्या कहूं कहकर तटस्थ सी हो गई। मन बुझ गया उसका, सोचने लगा मन ही मन, क्यों, क्या कोई गुनाह है यह, एक घर से दूसरी लड़की लाना? हां, गुनाह यदि हुआ है तो जाने अनजाने हमसे हुआ है, हम जिम्मेदार हैं, हम गुनाहगार हैं वीणा के, हम कर्जदार हैं वीणा के, उसके परिवार वालों के, ना तो उन लोगों को करनी चाहिए थी, ठुकरा देते मेरी चाहत के रिश्ते को, लेकिन उनका बड़प्पन देखो, मेरे प्यार को मेरी चाहत को वीणा के दुर्भाग्य से नहीं तोल रहे, वे उसी की किस्मत का खेल मानकर मेरी और प्रिया की राह में रोड़ा नहीं अटका रहे। अमित जब जब ऐसा सोचता था भावनाओं में बहकर बाल की खाल नोचने लगता था, चुप रहना पाता था। लगता है तुम खुश नहीं हुई सुनकर मेरी शादी की बात, अमित ने दोबारा प्रश्न कर डाला मां से। मैं तो हर हाल में खुश हूं, मां के मुंह से फिर वही तटस्थ जवाब निकला। मेरा भाग्य देखो, अपनी शादी की बात स्वयं चलानी पड़ रही है, उस पर तुम दो शब्द घुमा फिराकर दोहरा रही हो। अमित शायद मां के मन से कुछ कहलवाना चाह रहा था अपनी खुशी के शब्द, लेकिन मां थी कि सोच का दायरा बहुत संकुचित था उसका, दुख की ज्यादा चिंता थी। कौन कहां दुखी है इसकी था नहीं रखती वह, बस वह स्वयं दुखी है, उसका जवान बेटा चला गया, अभी वर्ष भी नहीं बीता, बहू घर से निकलकर मायके चली गई है, मेरा दुख बांटने की बजाय मायके चली गई है, मेरे बेटे की याद भी ठुकरा गई, मां की यही बातें कचोटती हैं। मां के मुंह से निकल ही गया आखिर, तुम्हें शादी की पड़ी है, मेरा दुख अभी खत्म भी नहीं हुआ, वर्ष अभी बीता नहीं और घर में शादी की बात शुरू हो गई, मेरा जवान बेटा चला गया, और मां रोने लगी। बहुत अच्छी बात कर रही हो मां, दुख तुम्हें ही है क्या, हमें नहीं हुआ कुछ, और अपनी जिंदगी की गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दे क्या? आवेश से उसका चेहरा तमतमाने लगा था। मैं यह कब कहना चाह रही हूं, उसे देखो, मेरे पास बैठकर मेरा दुख बांटने की बजाय मायके जाकर बैठ गई है, मां के मुख से निकल ही गया आखिरकार। अमित तब फूट पड़ा, वाह मां वाह, तुम्हारा दुख किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वीणा का दुख तो सबसे छिपा रहता है, सब समझते हैं, वीणा मायके चली गई, उसका दुख समाप्त हो गया, जैसे फिल्म में रोल अदा करने आई थी वह, रोल खत्म दुख खत्म, उसके दुख की सीमा को तुम क्या समझो मां, और उसे जरा भी दोष मत देना, उसका किया मैं तुम हम सब सात जन्म भी नहीं उतार सकते। बस बस रहने दो, तुम तो उसकी ही बात करोगे, अब तो तुम्हें उसकी हर बात ही ठीक लगेगी। बस फिर क्या था, अमित आपे से बाहर हो गया, आवाज ऊंची हो गई उसकी, शायद अपनी बात कहने के लिए शब्द कम थे, या कि मन ही मन इतना घुटा हुआ था कि शब्दों का आवेग थम ही ना पाया। हां, आज तुम यही कहोगी, मां अपने मन के चोर को छिपाने का सबसे बड़ा आसान रास्ता है यह, हमने क्या किया उसके साथ, कभी सोचा है, देव से शादी हुई, वह विधवा हो गई, देखते देखते उसके दुख की कोई सीमा नहीं, वह विधवा बनकर तुम्हारे पास बैठी रोती रहे सारी जिंदगी, कौन से जन्म का कर्ज है जो तुम्हारे प्रति वो चुकाए, शादी करके जिस दिन आई थी उल्टे पांव लौट जाती तो शायद मैं भी कहता उसने अपनी भावनाओं को सही समझा। एक पतिव्रता बन गई थी वह, दिन रात तुम्हारे बेटे की सेवा करती रही, उसका इनाम तुम यह दे रही हो उसे? 7 जन्म उसकी पूजा करो तो शायद उतर नहीं पाएगा यह ऋण। देख लेना माँ, तुम हम सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी भुगतेंगे उसकी इस चोट को। अमित की आवाज इतनी ऊंची थी कि बाबूजी भी वहां आ गए। बाबूजी को कुछ पता तो था नहीं बात का। अमित को ऊंचा बोलते देखकर उससे बोले, क्यों चिल्लाकर बोल रहे हो मां से, धीमे बात नहीं होती क्या? कैसे धीमे बोलूं, यह सुनती ही नहीं है, समझती नहीं है, अपना रोना रोती है, एक ही बात को हर जगह फिट कर देती है। मुझे क्या पता मेरा दुख देखे कोई, अमित थोड़ी आवाज नीची कर चुका था। अमित को पिता से ढाढ़स की आशा थी, वह सब समझ गए। अमित की बात सुनकर बोले, ये तो पागल है, वीणा का तो कर्ज है हम पर, अपनी भाभी से ही बात कर, मैं गुप्ता साहब को चिट्ठी लिख दूंगा, अब बरसी को चंद दिन ही रह गए हैं, शादी कर लो तुम यदि वे खुशी से मानते हैं। हमें तेरी खुशी की परवाह है बेटा, और उनकी बेटी तो हमारी बेटी है, तुमने उसके साथ जीवन जो बिताना है, जो करो सोच समझ कर करो। और यह बात सुनकर अमित का आवेश थम गया। तूफान जो मैं क्या कहूं वाक्य से खड़ा हुआ था एकाएक थम गया, और मां कृष्णा भी देखो एकाएक चुप हो गई, आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे भी तो प्रिया अच्छी लगती है, मैंने ना तो नहीं की थी, बस अपने दुख की बात ही तो की थी, कभी सुख को चाहकर भी जीने की कोशिश करो, इसीलिए कहता हूं सुबह शाम भगवान का ध्यान करो, पूजा पाठ करो, भजन कीर्तन में जाया करो, सबके दुख एक समान लगेंगे, दुखों को देखोगी तो सभी दुखी लगेंगे, सुख की चाह करोगी तो दुख सभी बौने पड़ जाएंगे उसके सामने। पिता श्री राम की बात अमित के अंतःकरण को छू गई, वह उसके मन को पहचानते थे। आप मुझे गुप्ता जी के नाम चिट्ठी लिख दो, मैं स्वयं देहरादून जाकर सब तय कराऊंगा। अमित ने तब कहा, ठीक है शाम को ले लेना, अब जाओ मुंह हाथ धो लो और गुस्सा शांत करो। पिता श्री राम समझते थे अमित के मन को, उसे शांत करना बहुत आसान था। अमित के जीवन में बहार आ गई। देव की बरसी के बाद 10 ही दिन में सब तैयारी हो गई, अमित की शादी हो गई प्रिया से। देहरादून से दिल्ली की दूरी जैसे खत्म हो गई थी अमित के लिए। दिन के समय फेरे हुए, बारात के नाम पर घर के लोग और अमित के 2 मित्र गए थे देहरादून। वीणा वहीं से आकर परिवार के साथ मिल गई, ना कोई बैंड ना बाजा, सादगी से विवाह संपन्न हो गया। प्रिया को साथ लेकर सब देर रात गए, दिल्ली लौट आए। जीवन का सबसे मधुर सपना अमित का पूरा हो गया। प्रिया जिसके नाम की माला वह हरदम जपता था, आज उसके जीवन में नए नए सपने जोड़ने को आकर मिल गई। आज अमित सिर्फ अमित नहीं रह गया, आज अमित के साथ प्रिया का नाम भी जुड़ गया, सपनों को साकार करने में जुट गया अमित। 1 महीना तो घूमने में लग गया, वह कश्मीर भी गया, शिमला भी गया, और ना जाने कहां कहां। प्रिया के मन में आई हर बात को पूरा करने में ही जुटा रहता। शादी को हुए 6 महीने बीत गए और अमित प्रिया को लगता था जैसे अभी कुछ समय ही नहीं हुआ है, नित्य नए प्रेम प्रसंग होते, और तब एक ही बात प्रिया दोहराती, अमित तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। अमित सुनता और यही कहता, प्रिया तुमने मेरे जीवन को नई दिशा दी है, यह जीवन तुम्हारा साथ पाकर सार्थक हो गया है, यह सुख तुम्हारे साथ का इतना सुंदर होगा, ऐसा तो मैं ढेर सी कल्पनाएं करके भी नहीं जान पाया। सुख के 100 दिन और कष्ट का 1 दिन एक समान बीतते लगते हैं। देहरादून गए तो मां निर्मला ने बातों ही बातों में कह दिया अमित से, बेटा वीणा के लिए कुछ सोचो। पल पल यह युग समान बीतता प्रतीत हो रहा है। अमित को तब अपनी भूल का एहसास हो गया था। वह सपनों की दुनिया से अपनी धरती पर लौट आया। उसने देखा दूर वीणा अकेली बैठी आसमान के तारे गिन रही है। 1, 2, 3 अनगिनत तारे। उसकी गिनती न रुकती है न खत्म होने को आती है। अंतहीन समय वीणा के लिए। मैं कल ही दिल्ली लौटकर विज्ञापन दूंगा। मम्मी आप चिंता ना करो, अमित ने उन्हें दिलासा दिया। जैसा ठीक लगे बेटा वही करो। प्रेम तो बार बार छुट्टी नहीं आ सकता। प्रेम का दायित्व तुम्हें ही निभाना है। और जैसे उन्हें कुछ याद आया बोली, एक रिश्ता तो मेरे पास आया था, मैं न हाँ कर सकी न ना। कौन था मम्मी? अमित उत्सुक हो उठा। जिनसे हमने यह मकान खरीदा था उनका बेटा। मिसेस टंडन चलकर आई थी। उनका बेटा फौज में कर्नल है। वीणा से उम्र में 10 वर्ष बड़ा। उम्र की बात तो फिर भी चल सकती है, लेकिन उसका अपना एक बेटा है 16 वर्ष का। यहाँ दून स्कूल में पढ़ता है। 3 साल हो गए हैं उसकी पत्नी का देहांत हुए। वीणा को इशारे से कहा था, वह चुप रही। बाद में डैडी जी ने बात आगे बढ़ाने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। इतना बड़ा बेटा हो जिसका, उससे कैसे विवाह कर दे? मैंने तो लड़का देखा था, क्या गबरू जवान। लगता ही नहीं कि इतने बड़े बेटे का बाप है, पर मन नहीं मानता बात आगे बढ़ाने को। कुछ रुकी माँ, फिर बोली, मिसेस टंडन ने तो 2-3 बार जिक्र किया है, लेकिन मैं ही चुप हूँ। अमित कुछ कहता उससे पहले प्रिया बोल पड़ी, नहीं मम्मी, इस बात को यहीं समाप्त कर दो। शादी का मतलब यह नहीं कि जो भी आए उसे हाँ कर दे। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से तो शादी नहीं कर सकते, और फिर इतना बड़ा बेटा। दीदी के लिए ऐसे वर मुझे नहीं जचते। हम तो चाहते हैं दीदी को ऐसा वर मिले जो उम्र में चाहे थोड़ा बड़ा हो, पर जिससे बंध कर वह अपने परिवार की सोचे। कुछ रुक कर फिर से बोली, अब आए मिसेस टंडन तो साफ मना कर देना। ऐसे के लिए दोबारा दीदी से पूछना भी मत, कहीं फिर भड़क गई तो दोबारा नहीं मानेंगी। माँ भी प्रिया की बात से सहमत होते हुए बोली, तुम ठीक कहती हो प्रिया, मैं उन्हें साफ मना कर दूं। बात वहीं समाप्त हो गई। अगले दिन प्रिया व अमित दिल्ली लौट गए, और अमित ने जाते ही विज्ञापन दे दिया वीणा की पुनः शादी का। 10 दिन बाद ही डाक से ढेर से पत्र आ गए। माँ कृष्णा को पता चल गया। पत्रों का आशय समझकर उसने आसमान एक कर दिया। मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। जिस घर से मेरे बेटे की अर्थी उठी, उस घर में उसकी बहू की डोली का सामान नहीं तैयार हो सकता, आवेश में बोल गई थी मां। अमित को इस बात का आभास पहले से ही था। मां को समझाने के लिए वह पहले से ही तैयार था। उसके आवेश को शांत करना जरूरी था। प्रिया से शादी नहीं हुई थी तब बात और थी, अब उसे अपने साथ साथ प्रिया के मनोभावों का भी ख्याल रखना था। मां की बात प्रिया को अन्यथा ना लगे उसे इस बात की भी चिंता थी। उसके आवेश को देखकर वह बोला, मां तुम ऐसी बात करने से पहले सोचो जरा, जो नहीं रहा उसका दुख तुम्हें है, मुझे भी है, और हम सभी को है, लेकिन जरा सोचो, जरा अपनी भावनाओं में वीणा को भी जगह दो। वह किसके सहारे जी रही है? अभी तो सब है, लेकिन कुछ समय बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। हमारे घर को देखो, इसे पड़ी है उसकी। मोहन भाई साहब अपने परिवार में मस्त हैं, रमेश भाई भी सब भूले हैं अपने बच्चों के साथ। कभी कभार मुझे लिख देते हैं कि वीणा के लिए क्या सोचा। इसके अलावा उनके पास भी कोई शब्द नहीं है। वह कुछ पल के लिए ठहरा, मां के पास शब्द नहीं थे उसकी बातों के। पिता श्री राम अपना रामायण पाठ छोड़कर उसकी ही बात सुन रहे थे। वह बोलने लगा आगे, क्या यह उम्र है भाभी की घर में यूं बैठने की? क्या माला जपकर सारी जिंदगी बिताई जा सकती है? हमारा फर्ज तो है कि वह चाहे या फिर हमें उसे मनाना पड़े, हमें उसका परिवार बसाने के लिए पूरा जोर लगाना चाहिए। सब कुछ तो उसने अपना न्योछावर कर दिया था हमारे परिवार पर। कितनी खुश थी वह देव से विवाह करके। उसकी सेवा देखकर भी भगवान ने उसकी पुकार नहीं सुनी। वह तो हर पल देव की मंगल कामना करती रही। अब भी वह देव को नहीं भूली, ना ही वह उसे कभी भूल पाएगी। लेकिन मैं तो यही मानता हूं और मेरा यह कर्तव्य भी है कि मैं उसके लिए कुछ नया करने की सोचूं। यही हमारा प्रायश्चित है उसके प्रति। और मेरी मानो तो तुम भी खुशी खुशी उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढने की कोशिश करो। मां चुप रही, आंसू बहने लगे उसकी आंखों से। बेटे का प्यार तो था ही मन में, बहू के लिए वह प्यार नहीं पा रही थी अपने मन में कि झट से हां कह देती। लेकिन अमित के शब्दों का विरोध करने की क्षमता भी नहीं थी। जैसी जिसकी सोच होती है उससे अधिक तो सोचा नहीं जा सकता। एक सामाजिक परंपरा के विरुद्ध जाना इतना सरल तो नहीं। लेकिन कई बार शब्द सारे रास्ते रोक लेते हैं। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वीणा का सोचती मां कृष्णा तो अमित की बातों का कोई उत्तर नहीं था उसके पास। देव के प्रति अपने प्यार को अमित के शब्द कम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वीणा के प्रति उसे उसके कर्तव्य का एहसास तो करवा ही रहे थे। तब इतना ही कह पाई, जो कुछ करना हो करो तुम, लेकिन मुझसे कुछ ना पूछो, मुझे कुछ ना बताओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। अमित समझ गया उसकी भावना को और यही ठान लिया उसने कि आगे से वह कभी भी वीणा के संबंध में उससे कोई बात नहीं करेगा। कुछ देर बाद पिता श्रीराम उसके कमरे में चले आए थे। प्रिया व अमित को संबोधित करते हुए उन्होंने यही कहा था, बेटा अपनी मां की बात का बुरा ना मनाना, वह देव की याद से बाहर नहीं निकल पाएगी। तुम जो कर रहे हो ईश्वर तुम्हारा साथ देगा, उसका परिवार बस जाए, मेरी यही प्रार्थना है। हां वह जैसा चाहती है वैसा करने में कोई हर्ज नहीं। मां के लिए अपनी संतान से ऊपर कोई नहीं होता और वह देव से आगे अभी कुछ नहीं सोच पाएगी। ऐसे में जो करो उसे उसकी खबर ना लगने दो, वक्त स्वयं उसको समझा देगा। और फिर यही हुआ। अमित पत्र आते ही कमरा बंद करके प्रिया के साथ उनकी छटनी करता और एक एक करके जवाब भेज देता। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं लग रहा था। एक विधवा का नाम जुड़ गया था वीणा के नाम के आगे। ऐसे में उचित वर की तलाश टेढ़ी खीर लग रही थी उसे।